जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय चार श्लोक संख्या 156। गोप्यस्तपः किम चरन् यदमोऽस्य रूपम्। लावण्य सारम समोर्ध्वमनन्य सिद्धम्। दृग्भि पिबन्त्यनु सवाभिनवं दुरापम्। एकांत धाम यत सहाश्रिय ऐश्वरस्य। गोप्यस्तपः किम चरन् यदमोऽस्य रूपम्। लावण्य सारम समोर्ध्वमनन्य सिद्धम्। दृग्भि पिबन्त्यनु सवाभिनवं दुरापम्। एकांत धाम यत सहाश्रिय ऐश्वरस्य। गोप्यस्तपः किम चरन् यदमोऽस्य रूपम्। लावण्य सारम समोर्ध्वमनन्य सिद्धम्। दृग्भि पिबन्त्यनु सवाभिनवं दुरापम्। एकांत धाम यत सहाश्रिय ऐश्वरस्य। अनुवाद है। मथुरा की स्त्रियां कहती हैं, मेरे पीछे बोलिए, ना जाने गोपियों ने कौन सा तप किया है। वे अपनी आंखों से भगवान कृष्ण के मुखमंडल रूपी अमृत का निरंतर पान करती हैं, जो लावण्य का सार है तथा अतुलनीय है। वही लावण्य सौंदर्य यश तथा ऐश्वर्य का एकमात्र आश्रय है। वह स्वयं में पूर्ण, वह स्वयं में पूर्ण चिर नवीन तथा अति विरल है। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद की। ये श्लोक श्रीमद् भागवत से 10:44-14 लिया गया है, जब मथुरा की स्त्रियों ने कृष्ण तथा बलराम को कंस के अखाड़े में मुष्टिक तथा चाणूर नामक महान मल्लों के साथ देखा तो उन्होंने ऐसा कहा था। यहां प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो ये जो घटना है, ये श्लोक जो कृष्णदास कविराज तो ले रहे हैं श्रीमद् भागवत से, तो ये उस समय की घटना है। मथुरा की स्त्रियां कृष्ण के माधुर्य को देखती हैं। वहां जितने प्रकार के लोग थे उतने प्रकार से कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, अलग अलग भावों में दर्शन कर रहे हैं। जो मल्ल थे तो चूंकि उनके शरीर पत्थर के समान कठोर थे तो वे कृष्ण को वज्र के समान देख रहे थे, कठोर। और मथुरा की स्त्रियां क्योंकि कोमल स्वभाव की थीं तो वे कृष्ण के शरीर को अत्यंत कोमल देख रही हैं। तो वे उस समय जब देखते हैं कि इतना अन्याय हो रहा है, कृष्ण और बलराम जो कि बहुत ही कोमल बालक हैं, इनके साथ कोमल व्यवहार होना चाहिए, और कंस के जो मल्ल हैं ये इतने कठोर शरीर वाले हैं, तो ये राजा की सभा में अन्याय हो रहा है, तो हम लोग नहीं रुकेंगे, हम लोग जाएंगे यहां से। लेकिन फिर कृष्ण के सौंदर्य से आकर्षित होकर के फिर वे गोपियों की प्रशंसा करने लगे। तो इस प्रकार से गोपियों की तपस्या की प्रशंसा कर रही हैं, आश्चर्य कर रही हैं कि गोपियों ने क्या तपस्या की है, जो कि कृष्ण का ये जो रूप है, जो लावण्य का सार है, तो कृष्ण के रूप में लावण्य भी है और माधुर्य भी है। लावण्य और माधुर्य में क्या अंतर है? कृष्ण का कृष्ण के रूप में लावण्य है नहीं, लावण्य बना है लवण से, लावण्य बना है लवण से, लवण माने नमक, यानी नमकीन है। कृष्ण का जो रूप है वो नमकीन है, नमकीन जैसे कि वो जो है बड़ी अद्भुत लीलाएं करते हैं, कभी तंग करते हैं गोपियों को या चोरी करते हैं, तो ये जो है नमकीन है। और माधुर्य मना है मधु से, तो मधुरता है कृष्ण के रूप में, तो मधुर तो है ही है, और साथ साथ लावण्य भी है कृष्ण के रूप में, दोनों चीजें हैं, लावण्य भी है और माधुर्य भी है। तो यहाँ पर बताया गया है लावण्य सारम, लावण्य सारम और असमोर्ध्वम, असम ऊर्ध्वम, ना तो समान है कृष्ण के रूप के कुछ कोई रूप और ना उससे ऊपर है। अनन्य सिद्धम, और किसी प्रकार से सिद्ध नहीं किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति प्राप्त करे। दृग भी विवंती अनुसवम, तो अपने नेत्रों से हमेशा पीती रहती हैं गोपियां, कृष्ण के रूप को पीती रहती हैं। एकांत धाम यथा श्री ऐश्वर्य, यश का और श्री का और ऐश्वर्य का एकमात्र भंडार कृष्ण का रूप है। तो ये जो है कृष्णदास कविराज ने चैतन्य महाप्रभु के इस पृथ्वी में अवतीर्ण होने का जो दूसरा कारण है वो वर्णन कर रहे हैं, और इसमें उन्होंने गोपियों के जो है इस भाव की प्रशंसा की है, गोपियों का कैसा भाव है, और भगवान चैतन्य उस भाव का साधन करने के लिए आए। तो जो तीन अंतरंग कारण हैं, कई बार चर्चा हो चुकी है, तो उसमें दूसरा जो कारण है उसकी चर्चा कर रहे हैं कृष्णदास कविराज। तो अब इस श्लोक में गोपियों की तपस्या, चूंकि वो पूछ रही हैं, वो आश्चर्य कर रहे हैं कि गोपियों ने क्या तपस्या की है, तो आज पूरा जो प्रवचन है ये हमारा होगा गोपियों की तपस्या पर। गर्ग संहिता में भगवान कृष्ण के धाम में जब ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ आए और अवतार की प्रार्थना की, तो भगवान कृष्ण पूरी योजना बनाते हैं कि मेरा अवतार होगा और कौन क्या बनेंगे उस अवतार में, लीला में। तो फिर ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया, ब्रह्मा जी ने पूछा कि जो गोपियां बनेंगी आपके इस लीला में, तो हे पुरुषोत्तम, इन स्त्रियों ने कौन सा पुण्य कार्य किया है तथा इन्हें कौन कौन से वर मिल चुके हैं जिनके फल स्वरूप ये ब्रज में निवास करेंगे, क्योंकि आपका वो स्थान तो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तो स्त्रियां कैसे आपके ब्रज में आएंगी, तो कौन सी स्त्रियां हैं, कौन प्रकार का वो तपस्या करती हैं या पुण्य करती हैं जिससे कि वो आपके ब्रज में स्थान प्राप्त करेंगे। एता कथम ब्रजे भाव्या केन पुण्येन कैर्वरे दुर्लभम हि पदम तासाम योगे भी पुरुषोत्तम। तो श्री भगवान कहते हैं पहली जो स्त्रियां हैं वो हैं श्रुतियां, श्रुतियां जो है जो वेदों की ऋचाएं हैं वे गोपियां बनेंगी, तो उन्होंने क्या पुण्य किया है जैसे कि वे गोपियां बनेंगी, श्रुति रूपा गोपियां। तो भगवान कहते हैं पूर्व काल में श्रुतियों ने श्वेत द्वीप में जाकर वहां मेरे स्वरूप भूत विराट पुरुष का मधुर वाणी में स्तवन किया था, तब हजार चरणों वाले विराट पुरुष प्रसन्न हो गए और बोले। श्री हरि ने कहा हे श्रुतियों, तुम्हें जो भी पाने की इच्छा हो वह वर मांग लो। जिनके ऊपर मैं स्वयं प्रसन्न हो गया उनके लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है। श्वेत द्वीपे च भूमानम श्रुति अस्तुष्टुभु परम गिराभिस्ता प्रसन्नो भूत सहस्रपान वरम वृणीत योयम वे यन्मनोवांछितम महं ये साम प्रसन्नो हम साक्षात एसाम किं दुर्लभम हितम। तो श्रुतियां क्या कहती हैं, भगवान आप मन वाणी से नहीं जाने जा सकते, अतः हम आपको जानने में असमर्थ हैं। बताया गया कि वेदों वेदेश दुर्लभम, वेदों के द्वारा भगवान को जानना संभव नहीं है। तो श्रुतियां कहती हैं कि हम आपको जानने में असमर्थ हैं। वेदों का वर्णन उसी प्रकार से है कि ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, है ना, निषेध विधि से वेदों ने वर्णन किया है भगवान का। तो श्रुतियां कहती हैं कि हम आपको जानने में असमर्थ हैं। पुराण वेत्ता ज्ञानी पुरुष यहां जैसे केवल आनंद मात्र बताते हैं, अपने उसी रूप का हमें दर्शन कराइए। हे प्रभु, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो यही दीजिए, अपने रूप का दर्शन कराइए। तो वेदों के द्वारा भगवान ने कहा है ना कि मेरा दर्शन नहीं हो सकता, ना हम वेदैर न तपसा, है ना, सकेवम विधो दृष्टुम दृष्टवान सीमा में था। तो ये जो वेदों की ऋचाएं हैं वो कहते हैं कि हमें अपना दर्शन कराइए। हे प्रभु, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो यही दीजिए। वांग्मनो गोचरातीतम ततो न ज्ञायते तुयन् आनंद मात्रमिति यन्वन् अन्ति है पुराविदः तद्रूपं दर्शयास्माकं यदि देयो वरोहिणः श्रुत्वा तं दर्शयामास समलोकं प्रकृते परम। श्रुतियों की ये बात सुनकर भगवान ने उन्हें अपने दिव्य गोलोक धाम का दर्शन कराया जो प्रकृति से परे है। वह लोक आनंद स्वरूप अविनाशी और निर्विकार है। वहां वृंदावन नामक वन है जो काम पूरक कल्प वृक्षों से सुशोभित है। केवलानु भवानंद मात्रम अक्षर मम व्ययम यत्र वृंदावनम नाम वनम काम दुघेर तुमे। मनोहर निकुंजों से संपन्न वह वृंदावन सभी ऋतुओं में सुखदायी है। वहां सुंदर झरनों और गुफाओं से सुशोभित गोवर्धन नामक गिरी है। रत्नों एवं धातुओं से भरा हुआ वह श्रीमान पर्वत सुंदर पक्षियों से आवृत है। वहां स्वच्छ जल वाली श्रेष्ठ नदी यमुना भी लहराती है। उसके दोनों तट रत्नों से बंधे हैं। हंस और कमल आदि से वह सदा व्याप्त रहती है। मनोरमे निकुंजाढ़्यम सर्वतो सुख संयुतम यत्र गोवर्धनो नाम सुंदर झरे दरीयुत रत्न धातु मया श्रीमान सुपक्षी गण समृत यत्र निर्मल पानीया कालिंदी सरितम वरम रत्न बद्धो भय तटी हंस पद्मादि संकुलम। वहां विविध रास रंग से उन्मत्त गोपियों का समुदाय शोभा पाता है। उसी गोपी समुदाय के मध्य भाग में किशोर वय से सुशोभित भगवान कृष्ण विराजते हैं। नाना रास रसोन्मत्तम यत्र गोपी कदम्बकम तत्कदम्बक मध्यस्थ किशोराकृति रच्युतः। उन श्रुतियों के इस प्रकार अपना लोक दिखाकर भगवान बोले, कहो तुम्हारे लिए अब और क्या करूं। आप सुन रहे हैं, गोपियों को भगवान ने अपना धाम दिखाया, अब कहते हैं अब और बोलो क्या करूं। तुमने मेरा यह लोक तो देख ही लिया, इससे उत्तम दूसरा कोई वरदान नहीं है। भगवान कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, श्रुतियों से कह रहे हैं। गोपियां तो बाद में बनेंगी ना, अभी गोपियां नहीं है वो, ये श्रुतियां हैं। दर्शयित्वा चताप्राह ब्रूत किम करवाणी वहां दृष्टो मदीयो लोकोयम यतो नास्ति परम वरम। श्रुतियों ने कहा अब भगवान का धाम देख लिया, अब श्रुतियां क्या कहती हैं? प्रभु आपके करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर श्री विग्रह को देखकर हमें कामनी भाव आ गया है और हमें आपसे मिलने की इच्छा हो रही है, हम विरह ताप से संतप्त हैं, इसमें संदेह नहीं है। कंदर्प कोटि लावण्य त्वयि दृष्टे मनांसिनः कामनी भाव मासाद्य स्मर क्षिप्तान्य संशयम्। अतः आपके लोक में रहने वाली गोपियां आपका संग पाने के लिए जैसे आपकी सेवा करती हैं, वे हमारी भी वैसी ही अभिलाषा है। या तो लोक के वासिन्य काम तत्व गोपिका भजंती रमणम मत्वा चिकीर साजनिन स्वयं। अब भगवान क्या कहते हैं सुनिए ध्यान से, भगवान ने क्या उत्तर दिया? ये आसान नहीं है, ये वरदान आसान नहीं है। भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं, हे श्रुतियों तुम लोगों का यह मनोरथ दुर्लभ है, फिर भी मैं इसका भली भांति अनुमोदन कर चुका हूं, अतः वह सत्य होकर रहेगा। आगे होने वाली सृष्टि में जब ब्रह्मा जगत की रचना में संलग्न होंगे उस समय सारस्वत कल्प बीतने पर तुम सभी श्रुतियां ब्रज में गोपियां होगी। दुर्लभो दुर्घटश्चैव युष्माकं तु मनोरथः मया अनुमोदितः सम्यग् सत्यो भवितुम् अर्हति आगामिनि विरिञ्चोतुम् जाते सृष्ट्यर्थमुद्यते कल्पे सारस्वते चीते ब्रजे गोप्यो भविष्यतः। भूमंडल पर भारतवर्ष में मेरे मथुरा मंडल के अंतर्गत वृंदावन में रास मंडल के भीतर मैं तुम्हारा प्रीतम बनूंगा। पृथिव्याम भारते क्षेत्रे माथुरे मम मंडले वृंदावने भविष्यामि प्रेयान्वो रास मंडले। जार धर्म से तुम्हारा मेरे प्रति सुदृढ़ प्रेम होगा। जार धर्म मतलब विवाहित स्त्री दूसरे पति के साथ, दूसरे पुरुष के साथ जो प्रेम करती है वो जार धर्म कहलाता है, जो सब प्रेमों से बढ़कर है। परकिया तो परकिया भाव सब प्रेमों से बढ़कर है। तुम सब श्रुतियां मुझे पाकर सफल मनोरथ हो जाओगी। जार धर्मे अण सुस्नेहम सुदृढ़ सर्वतोधिकम मई संप्राप्य सर्वाही कृतिकृत्या भविष्य। तो भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी पूर्व कल्प में मैंने वर दिया है, उसी के प्रभाव से ये श्रुतियां ब्रज में गोपियां होंगी। अब अन्य गोपियों के लक्षण सुनो। तास गोप्यो भविष्यन्ति पूर्व कल्प वरान मम अन्यासाम चैव गोपी नाम लक्षणम श्रुतन विधे। अब है मिथिलापुर वासिनी गोपियां मिथिला में, जहां भगवान राम का विवाह हुआ सीता के साथ। त्रेता युग में देवताओं की रक्षा और राक्षसों का संहार करने के लिए महापराक्रमी रामचंद्र जी अवतीर्ण हुए। कमल लोचन श्री राम ने सीता के स्वयंवर में जाकर धनुष तोड़ा और उन जनक नंदिनी श्री सीता जी के साथ विवाह किया। सुराणाम रक्षणार्थाय राक्षसानाम बधाय च त्रेतायाम रामचंद्रो भुवनवीरो दशरथात्मज। सीता स्वयं वरम गत्वा धनुर्भंगम चकार सह वाह जानकी सीताम रामो राजीव लोचन। हे ब्रह्मा जी उस अवसर पर जनकपुर की स्त्रियां श्री राम को देखकर प्रेम विवल हो गईं। उन्होंने एकांत में उन महाभाग से अपना अभिप्राय प्रकट किया, राघव आप हमारे परम प्रियतम बन जाएं। तम दृष्ट्वा मेथिला सर्वे पुरंद्रयो मुमुहुर विधे रहस्यम रहस्योचुर महात्मानम भरतानो भवहे प्रभु। तब श्री राम ने कहा सुंदरियो तुम शोक मत करो, द्वापर के अंत में मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तुम लोग परम श्रद्धा और भक्ति के साथ, अब देखो भगवान क्या कहते हैं, तपस्या करना है। तो इन मिथिलापुर की स्त्रियों को भगवान क्या आदेश देते हैं तपस्या करने के लिए? तुम श्रद्धा और भक्ति के साथ तीर्थ दान तप शौच एवं सदाचार का भली भांति पालन करती रहो, तुम्हें ब्रज में गोपी होने का सुअवसर प्राप्त होगा। तामाह राघवेन्द्रसु मासोकं कुरुत स्त्रियः द्वापरान्ते करिष्यामि भवतीनां मनोरथं तीर्थं दानं तपः शौचं समाचरत तत्त्वतः श्रद्धया परया भक्त्या ब्रजे गोप्यो भविष्यत। इस प्रकार वर देकर करुणानिधि से राम ने अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिया। अब आगे क्या हुआ, कोसलपुर से भगवान की बारात निकलती है, मिथिलापुर से रास्ते में कोसलपुर पड़ा। उस समय मार्ग में कोसल जनपद की स्त्रियों ने भी राजपथ से जाते हुए उन कमनीय कांति राम को देखा, उनकी सुंदरता कामदेव को मोहित कर रही थी। उन स्त्रियों ने श्री राम को मनी मन पति के रूप में वरण कर लिया। मार्गे च कौशला नार्यो रामम दृष्ट्वाति सुंदरम मनसा वव्रीरे तम वै पतिम कंदर्प मोहनम। उस समय सर्वज श्री राम ने उन समस्त स्त्रियों को मन ही मन वर दिया। तो वहां मौका नहीं था बातचीत करने का, लेकिन उनके मन की बात को भगवान समझ गए और के सारे में ही उन्होंने वरदान दिया। तुम सभी ब्रज में गोपियां होंगी और उस समय मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। मरसापि वरम रामो ददौताभ्यो यसे सबिन मनोरथम करेष्यामि ब्रजे गोप्यो भविष्यत। अच्छा, ये है कोसलपुर वासिनी स्त्रियां। अब ये कोसलपुर वासिनी जो स्त्रियां हैं, ये भगवान के वरदान से, रामचंद्र के वरदान से ये क्या हुई, नंद महाराज के घर में जाकर के रत्नमय भूषणों से विभूषित कन्याएं उनके गोष्ठ में गऊओं का गोबर उठाने का काम करने लगी। ये कितनी बड़ी ये जो है कृपा है उनको प्राप्त हुई। क्या काम मिला उनको, गोबर उठाने का काम मिला। कहां, नंद भवन में, नंद महाराज की 1 करोड़ गऊएं थी, हाँ? गोबर उठाने का काम करने लगी। वहां सुंदर श्री कृष्ण को देखकर उन कन्याओं को अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो आया और वे श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए नित्य यमुना जी की सेवा पूजा करने लगी। तो क्या तपस्या की उन्होंने, यमुना जी की सेवा पूजा करने लगी। आनंद राजस्य गृहे कन्या रत्न भूषिताम गवाम गोमय हारिण्यो बभोवर्गो ब्रजे सुचाम श्री कृष्णम सुंदरम दृष्ट्वा कन्या जाति स्मराश्यता कालिंदी सेवनम चक्रुर नित्यम श्री कृष्ण हेतवे। फिर एक दिन श्यामल अंगों वाली विशाल लोचना यमुना जी उन सबको दर्शन देकर और वरण प्रदान करने के लिए तैयार हुई। यमुना जी ने दर्शन दिया और कहा कि वर मांगो। अतः गदा श्यामलांगी कालिंदी दीर्घ लोचना ताभ्या सुदर्शनम दत्वा वरम दातुम समुद्यतम। तब उन गोप कन्याओं ने ये वर मांगा कि ब्रजेश्वर नंदराज के पुत्र श्री कृष्ण हमारे पति हों। तब तथास्तु कहकर यमुना वहीं अंतर्धान हो गई। तावव्रीरे ब्रजेशस्य पुत्रो भूयात् पतिश्चन तथास्तु चोक्त्वा कालिंदी तत्रैवान्तरधीयत। तो ये सब कन्याए वृंदावन में कार्तिकी पूर्णिमा की रात को रास मंडल में पहुंची। वहां श्री हरि ने उनके साथ उसी तरह विहार किया जैसे देवांगनाओं के साथ देवराज इंद्र विहार किया करते हैं। ता प्राप्ता वृंद कारण्य कार्तिक्याम रास मंडले ताभि सार्धम हरि रे मे सुरे भी सुर राडिव। अच्छा, तो अब कोसलपुर से भगवान फिर आए कहां, अयोध्या में। हाँ, तो अयोध्या की जो स्त्रियां हैं वो देखती हैं राम को। फिर सीता और सैनिकों के साथ रघुनाथ जी अयोध्या पधारे। ये सुनकर अयोध्या में रहने वाली स्त्रियां उन्हें देखने के लिए दौड़ आईं। आगतम सीतया सार्धम सैनिक सहतम सहितम रघुम अयोध्या पुरवासिन्या श्रुत्वा द्रष्टुम समायुः। श्री राम को देखकर उनका मन मुग्ध हो गया, वे प्रेम से विह्वल हो मूर्छित हो गईं। फिर वे श्री राम के व्रत में परायण होकर, अब क्या तपस्या की उन्होंने, श्री राम के व्रत में परायण होकर सरयू के तट पर तपस्या करने लगी। सरयू नदी है अयोध्या में, वहीं पर तपस्या करने लगे। वीक्षितम मोहमापन्ना मूर्छिता प्रेम विह्वला ते पुस्तपस्ता सरयू तीरे रामे धृते व्रतम। तब उनके सामने आकाशवाणी हुई, सरयू के तट पर तपस्या करती हुई उनको आकाशवाणी सुनाई दी कि द्वापर के अंत में यमुना के किनारे वृंदावन में तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे, इसमें संदेह नहीं है। आकाशवाग भूत तासाम द्वापरांते मनोरथ भविष्यति न संदेहा कालिंदी तीर जेवने। तो इस प्रकार से भगवान राम की लीला में अभी तक तीन प्रकार की स्त्रियां की चर्चा हुई है, मिथिलापुर वासिनी, कौशलपुर वासिनी, अयोध्या वासिनी। अच्छा, अब इसके बाद ऋषि रूपा गोपियां हैं। ऋषि कौन से ऋषि हैं? दंडकारण्य के ऋषि। तो इसके पहले जो श्रुति रूपा गोपियां थी वे ब्रजवासी गोपों के घर में उत्पन्न हुई तथा उन्होंने ब्रज भूमि की ईश्वरी वृंदा देवी की आराधना की तथा वृंदा देवी की के वर से श्री कृष्ण को प्रसन्न किया, श्री कृष्ण को प्राप्त किया। अगर ज्यादा वर्णन करूंगा तो फिर समय नहीं मिलेगा हमको, तो जितना अधिक हो सके अधिक अधिक विभिन्न प्रकार की गोपियों का मैं वर्णन कर रहा हूं। तो अब है ऋषि रूपा गोपियां। तो ये ऋषि हैं, तो भगवान राम पिता की आज्ञा से दंडक वन में आते हैं और सीता लक्ष्मण भी उनके साथ थे और हाथ में धनुष लेकर इधर उधर विचर रहे थे। वहीं बहुत से मुनि थे, उनकी गोपाल वेशधारी भगवान के स्वरूप में निष्ठा थी। समझ रहे हैं, दंडकारण्य के ऋषि पहले से ही गोपाल के प्रति उनकी निष्ठा थी, गोपाल भगवान के प्रति। रास लीला के निमित्त वे भगवान का ध्यान करते थे, ऋषियों की पहले से ही माधुर्य भाव में कामना थी गोपाल जी के साथ। गोपालो उपासका सर्वे दंडकारण्यवासिनः ध्यायन्तः सततम् माम् वै रासार्थम् ध्यान तत्परम्। उस समय श्री राम की युवा अवस्था थी, वे हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए थे, जटाओं के मुकुट से उनकी विचित्र शोभा थी। इनका तो गोपाल रूप नहीं है राम का, जटा जूट धारण किए हैं। अपने आश्रम पर पधारे हुए श्री राम में उन मुनियों का ध्यान लग गया। वे ऋषि गोपाल वेशधारी भगवान के उपासक थे, अतः दूसरे ही स्वरूप में आए हुए श्री राम को देखकर सबके मन में अत्यंत आश्चर्य हो गया, उनकी समाधि टूट गई और देखा तो करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर श्री राम दिखाई दिए। ये साम आश्रमम आसादे धनुर्बाणे धरो युवा ते साम ध्याने गतो रामो जटा मुकुट मंडितः अन्य कृतिम ते संवेक्ष परम विस्मित मानसा ध्यान दुत्थाय ददृशु कोटिकंदर्प सन्निभम। तब वे बोले, अहो आज हमारे गोपाल जी बंसी और बेंत के बिना ही पधारे हैं। राम को देखा, कहते हैं हमारे गोपाल जी तो आ गए, बंसी और बेंत नहीं है इनके हाथ में। इस प्रकार मन ही मन विचार कर सबने श्री राम को प्रणाम किया और उनकी उत्तम स्तुति करने लगे। ऊचुस्ते यस्तु गोपालो बंसी बेत्रे बिना प्रभु इत्थम विचार्य मनसा नेमुश्चक्रु स्तुतिम पराम। तब श्री राम ने कहा, हे मुनियो वर मांगो। ये सुनकर सभी ने एक स्वर से कहा, जिस भांति सीता आपके प्रेम को प्राप्त है वैसे ही हम भी चाहते हैं। वरम वृणीत है मुनि यहाँ श्री राम स्थानुवाच यथा सीता तथा सर्वे भूयात्म इतिवादिनः। श्री राम बोले, यदि तुम्हारी ऐसी प्रार्थना हो कि जैसे भाई लक्ष्मण है वैसे हम भी आपके भाई बन जाएं, तब तो आज ही मेरे द्वारा तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो सकती है। किंतु तुमने तो सीता के समान होने का वर मांगा है, अतः ये वर महान कठिन और दुर्लभ है, क्योंकि इस समय मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है। मैं मर्यादा की रक्षा में तत्पर रहकर ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाता हूँ। सीतो पमेय वाक्येन दुर्घटो दुर्लभो वरः एक पत्नी व्रतो हम्बे मर्यादा पुरुषोत्तम। अतएव तुम्हें मेरे वर का आदर करके द्वापर के अंत में जन्म धारण करना होगा और वहीं मैं तुम्हारे इस उत्तम मनोरथ को पूर्ण करूंगा। तस्मात् मन्वरेणापि द्वापरान्ते भविष्यत् मनोरथम करिष्यामि भवतां वांछितं परम। इस प्रकार वर देकर श्री राम स्वयं पंचवटी पधारे। अब ये हो गई ऋषि रूप गोपियां। अब पुलिंद कन्या गोपियां हैं, पुलिंद मतलब भील, जंगल के जो भील हैं उनकी कन्याएं हैं। पंचवटी में भगवान आए और वहां पर्णकुटी में रहकर वनवास की अवधि पूरी करने लगे। उस समय भीलों की स्त्रियों ने उन्हें देखा, उनमें राम से मिलने की उत्कट इच्छा उत्पन्न होने के कारण वे प्रेम से बेहबल हो गईं, यहां तक कि श्री राम के चरणों की धूल मस्तक पर रखकर अपने प्राण छोड़ने की तैयारी करने लगीं। क्यों? क्योंकि वो तो सोचते हैं कि हमारा कोई अधिकार ही नहीं है, इनसे मिलने की तो बात क्या, इनसे बात करने की भी जो है ना हमारी योग्यता नहीं है, हम क्या योग्य हैं, है कि नहीं? अशिक्षित हैं और असभ्य हैं, भीड़ों की कन्याएं हैं, तो इसलिए क्या सोचती हैं कि हम प्राण छोड़ देंगे, आत्महत्या कर लेंगे। तो श्री राम के चरणों की धूल अपने सिर में रख करके आत्महत्या करने का विचार किया उन्होंने। तंदर्शन स्मर रुजहा पुलिंद्या प्रेम बेहबला श्रीमत् पाद रजो धृत्वा प्राणान् त्यक्तुम् समुद्यतम्। अब भगवान उस समय वो तो सर्वंतर्यामी है श्री राम, तो ब्रह्मचारी के वेश में वहां आए। राम ब्रह्मचारी के वेश में वहां आए और इस प्रकार बोले, स्त्रियों तुम व्यर्थ ही प्राण त्यागना चाहती हो, ऐसा मत करो। ब्रह्मचारी वपुर भूत्वा राम सत्र समागता प्राण संत्यागम मा कुरुत स्त्रियो वृथाम। द्वापर के शेष होने पर वृंदावन में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, इस प्रकार का आदेश देकर श्री राम का वह ब्रह्मचारी रूप वहीं अंतर्हित हो गया, अंतर्धान हो गए भगवान। वृंदावने द्वापरांते भविता वो मनोरथ इत्युक्त्वा ब्रह्मचारी तु